नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करेंगे। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की महिला जागरण अभियान की संगठन प्रक्रिया।
ये किताब समझाती है कि नारी जागरण जैसे मतलब इतने बड़े लक्ष्य के लिए एक मुनज्जम प्रयास कैसे खड़ा किया जा सकता है।
जी, वंदनीय माता जी ने इसमें बहुत साफ बताया है कि ये काम अकेले अकेले नहीं हो सकता।
हाँ, वही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रयास काफी नहीं है, इसके लिए तो जनशक्ति जुटानी होगी, संगठित होना पड़ेगा।
तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ भावना की बात नहीं करती बल्कि एक पूरा ढांचा, एक प्रक्रिया बताती है कि कैसे समाज के हर वर्ग की, खासकर पुरुषों और स्त्रियों की क्या भूमिका हो सकती है।
अच्छा, तो वंदनीय माता जी पहला कदम क्या बताती हैं? मैंने पढ़ा कि वो कहती हैं कि शुरुआत पुरुषों के उत्साह से होनी चाहिए, ये थोड़ा अलग सा लगा।
हाँ, ये दिलचस्प है। उनका कहना था कि पुरुष अपने संपर्क क्षेत्र में, मतलब अपने जान पहचान वालों में इस विचार को फैलाएं, और जो भावनाशील नारियां हैं उनको जोड़ें।
अध्यापिकाओं और छात्राओं का भी जिक्र है शायद।
जी हाँ, उनकी भूमिका भी अहम मानी गई। और देखिए, विचार ये था कि भले ही बागडोर अंत में नारी को ही संभालनी है, पर शुरू में पुरुषों को थोड़ा मार्गदर्शन देना होगा, उनका संकोच तोड़ने में मदद करनी होगी।
मतलब एक तरह से सहायक की भूमिका।
बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि आस्था की परीक्षा तो सक्रियता से ही होती है ना, सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से।
सही बात है। तो ठीक है, ये तो हुई शुरुआत की बात। अब अभियान को जमीन पर उतारने के लिए वो महिला शाखाओं की बात करती हैं। ये शाखाएं कैसे काम करेंगी, क्या ढांचा था इनका?
हाँ, महिला शाखाएं, वंदनीय माता जी ने इसका ढांचा बहुत ही व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल रखा था। शाखा में मुख्य सदस्य तो महिलाएं ही होंगी, जिन्हें सदस्य कहा गया।
और पुरुष?
समय, श्रम और मनोयोग का अनुदान, मतलब आप अपना टाइम दें, मेहनत करें, मन लगाएं, पैसे का उतना महत्व नहीं।
ये तो बहुत अलग सोच है। और पदों के बारे में, जैसे अध्यक्ष, सचिव?
नहीं, नहीं, पद लोलुपता से बचने के लिए प्रधान, उपप्रधान जैसे कोई पद रखे ही नहीं गए। बस एक उत्साही कार्यवाहक होगा जो काम को आगे बढ़ाएगा, और जरूरत पड़ने पर एक कोषाध्यक्ष।
वाह, मतलब सब कुछ एक परिवार की तरह चलाने की कोशिश।
बिल्कुल, परिवार पद्धति जैसा, ताकि आपसी खींचता ना हो।
ठीक है, ढांचा तो समझ आ गया, सरल, बिना पद वाला, परिवार जैसा। लेकिन सिर्फ ढांचा खड़ा करना तो काफी नहीं होता ना, उसे जीवंत कैसे रखा जाए, मतलब उसमें जान कैसे फूंकी जाए, में क्या क्या होता था?
इसके मोटे तौर पर तीन भाग बताए गए हैं। पहला, थोड़ी देर गायत्री मंत्र जप या हवन का कोई संक्षिप्त रूप, मतलब आध्यात्मिकता से जुड़ाव के लिए। दूसरा, प्रेरणा देने वाले सहगान, कीर्तन वगैरह।
और तीसरा?
तीसरा भाग सबसे अहम था, महिला समस्याओं और उनके समाधानों पर केंद्रित प्रवचन या कोई लेख पढ़ना, उस पर चर्चा करना, सीधे मुद्दे की बात।
अच्छा, मतलब आध्यात्म भी, प्रेरणा भी और समस्याओं पर सीधी चर्चा भी।
जी, और इसके साथ साथ घर घर जाकर संपर्क करना, छोटी छोटी गोष्ठियां करना, ये भी जरूरी बताया गया।
समझ गया। तो ये तो हुआ शाखा को एक्टिव रखने का तरीका, पर जो कार्यकर्ता बहुत कर्मठ हैं, जो रोज कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपेक्षाएं थी?
उनके लिए दो मुख्य बातें कही गई, समयदान और साधन दान।
समयदान मतलब समय देना।
हाँ, कम से कम रोज एक घंटा मिशन के प्रचार प्रसार के लिए देना, जैसे लोगों से मिलना, संपर्क साधना, साहित्य पढ़ना पढ़ाना।
साहित्य पढ़ना पढ़ाना कैसे?
इसके लिए एक बड़ा ही अनोखा सुझाव था, झोला पुस्तकालय।
झोला पुस्तकालय, ये क्या है?
मतलब कार्यकर्ता अपने झोले में कुछ छोटी प्रेरणादायक किताबें रखें, और जहां जाएं लोगों को पढ़ने को दें, उनसे चर्चा करें, एक चलता फिरता पुस्तकालय समझ लीजिए।
अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल और असरदार तरीका लगता है ज्ञान फैलाने का। और दूसरी बात आपने कही, साधन दान।
हाँ, साधन दान, इसके लिए ज्ञान घट या धर्म घट की व्यवस्था बताई। ये एक तरह से रोज की बचत थी परमार्थ के लिए।
कैसे करते थे इसे?
घर में गुल्लक जैसा बर्तन रख लिया, उसमें रोज 10 पैसे या एक मुट्ठी अनाज डाल दिया। ये छोटी सी रोज की आदत एक तो दान का संस्कार बनाती थी।
और दूसरा?
दूसरा, इससे शाखा के छोटे मोटे खर्चों के लिए धीरे धीरे कुछ धन भी जमा हो जाता था। मतलब बड़ी रकम की चिंता करने के बजाय छोटी नियमित बचत पर जोर था।
ये छोटी छोटी नियमित कोशिशों वाली बात वाकई बहुत व्यवहारिक है। अच्छा, वंदनीय माता जी ने सिर्फ संगठन चलाने तक की बात नहीं की, उन्होंने भविष्य की भी काफी सोची थी, है ना? जैसे शिक्षा, स्वावलंबन, सामाजिक सुधार।
बिल्कुल, उन्होंने शिक्षा, स्वावलंबन के कार्यक्रम, दहेज विरोध जैसे सुधार आंदोलनों की बात की, और तो और भविष्य में स्थायी गतिविधियों के लिए महिला मंदिर यानी समर्पित भवन बनाने का भी विजन रखा।
महिला मंदिर मतलब महिलाओं के लिए समर्पित इमारतें, ये तो बड़ा लक्ष्य लगता है।
हाँ, उनका मानना था कि अगर गतिविधियों को स्थायी रूप देना है तो अपनी एक इमारत होनी जरूरी है, और इसे बहुत कठिन मानकर हताश नहीं होना चाहिए। जैसे लोग दृढ़ निश्चय और जन सहयोग से अपने परिवार के लिए घर बना लेते हैं,
वैसे ही ये भी बन सकता है।
जी, उदार दानदाताओं को भी ये समझाना होगा कि सच्चा पुण्य परमार्थ सिर्फ मंदिर बनवाने में नहीं, बल्कि ऐसे कामों में है जिनसे समाज का, खासकर स्त्रियों का जीवन बेहतर हो।
तो कुल मिलाकर देखें तो वंदनीय माता जी ने महिला जागरण के लिए एक बहुत ही सुविचारित, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई और साथ ही आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को जोड़ने वाली एक पूरी संगठन प्रक्रिया दी है। ये सिर्फ एक अभियान का खाका नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों के निर्माण का एक समग्र दृष्टिकोण लगता है।
सही कहा आपने, और यहीं पर एक विचार मन में आता है कि आज का जो दौर है, जहां व्यक्तिवाद इतना हावी है, इंडिविजुअलिज्म जिसे कहते हैं, वहां वंदनीय माता जी की बताई ये सामूहिक समर्पण और संगठित प्रयास वाली पद्धति ये आज कितनी प्रासंगिक है, ये सोचने वाली बात है।
और अगर ये प्रासंगिक है तो आज की पीढ़ी इसे कैसे अपना सकती है, कैसे इसे फिर से जीवंत किया जा सकता है, शायद इस पर हम सबको थोड़ा और विचार करना चाहिए।